पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। फलक के ससुराल से इतना प्रेशर है कि नई कार दें, यहाँ अन्वय की बाइक रिप्लेस करनी है, मेरी कार इतनी दिक्कत करने लगी है, उस पर अभी हाथ भी तंग है। मेरे फ्रेंड के पास मेरे पैसे तो हैं, पर अभी वो देने की स्थिति में नहीं है। दुकान का काम अब मंदा चल रहा है, एक मेरी सैलरी से मैं क्या क्या करूँ। बाकी सब खर्चों को अगर टाल भी दूँ, तब भी इस वक्त हम एक न्यू कार खरीदने की पोजिशन में नहीं है, और वहाँ फलक के सास ससुर ने उसका जीना हराम कर रखा है। उनके इसी लालची रवैये के कारण मैं इस शादी के खिलाफ था, पर तब मेरी नहीं सुनी, और अब देखिए क्या हो रहा है। अभी पिछले महीने ही नया फ्रिज दिया है और अब गाड़ी की डिमांड। ये अक्षय था। शाम का वक्त था और इस वक्त पूरा परिवार साथ बैठा इस नई समस्या पर विचार कर रहा था, जिसका कोई हल उन्हें नजर नहीं आ रहा था। अक्षय की बात सुनकर अन्वय ने कुछ सोचते हुए कहा, भाई, जीजू से इस बारे में बात कीजिए ना, वो अपने मम्मी पापा को समझाएं। बात की थी मैंने सुमित से, पर कोई फायदा नहीं, वो उन्हें समझा समझा कर थक गया है, पर उसकी मम्मी जिद पकड़ कर बैठी है, और सुमित के पास इतने पैसे नहीं कि न्यू कार अफोर्ड कर सके। फलक की सैलरी भी घर खर्च में चली जाती है, वहाँ से कुछ नहीं हो सकता, और यहाँ अगर हम अपनी सेविंग्स वगैरह लगाकर किसी तरह कार खरीद भी लेते हैं तो उसके बाद हमें बहुत परेशानी होगी। भाई, उनकी हर जिद को पूरी करना तो सही नहीं है, हम हर बार दी की खुशी के लिए उनकी डिमांड पूरी करते हैं और वक्त के साथ उनका लालच बढ़ता ही जा रहा है। यूँ उनकी हर जायज़ नाजायज़ मांग पूरी करना तो उन्हें और बढ़ावा देना होगा। ये इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि सुमित उनसे अलग हो जाए, जो मुमकिन नहीं है, और जानबूझकर हमने ही फलक को उस नर्क में धकेला है, तो अब भुगतना तो होगा ही। अगर फलक की खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो उनके सास ससुर को खुश रखना होगा, उनके डिमांड्स पूरे करने होंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अभिजीत जी सब बातें सुनकर गंभीर सोच में डूबे थे। अन्वय का खून गुस्से से खौल रहा था और अक्षय सर पकड़े परेशान सा बैठा था। आहाना सबके लिए शाम की चाय और स्नैक्स लेकर चली आई और सबके चेहरों पर चिंता व परेशानी के भाव देखकर सौम्य स्वर में बोली, आप सब इतना परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। ये दिलासा देना ही था, क्योंकि वो भी जानती थी कि फिलहाल जो घर की स्थिति है उसमें उनकी ये डिमांड पूरी करना मुश्किल है। दूसरी तरफ बैठी चिंतन में डूबी रूपाली जी के कानों में जैसे ही आहाना की आवाज़ पड़ी, उनके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया ने जन्म लिया। इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, घर के बाकी बड़े खर्चों को अभी के लिए टाला जा सकता है। बैंक में थोड़े पैसे तो होंगे ही, बाकी पैसे बहू मिला देगी। काम करते साल भर होने वाला है, घर के खर्च में उसका एक पैसा नहीं लगता, तो उसके पास तो पैसे रखे ही होंगे। यकीन नहीं आता, ये वही रूपाली जी थी जिसे आहाना का काम करना पसंद नहीं था, जो रोज़ उसके लिए नई मुश्किलें पैदा करती थी, रोज़ उसके काम करने को लेकर नए ताने देती थी, और आज उसी के पैसों पर हक जता रही थी। सबकी निगाहें उनकी ओर घूम गई थी। कोई कुछ कहता उससे पहले ही अभिजीत जी ने उनके इस सुझाव पर विरोध प्रकट कर दिया। ये कैसी बातें कर रही हैं आप रूपाली जी, अब हम बहू के पैसों से अपनी बेटी की खुशियां खरीदेंगे? क्यों, क्या गलत है इसमें? आप ही तो कहते हैं ना कि बहू नहीं बेटी है आपकी, तो मुसीबत की घड़ी में पिता का सहारा बनना एक बेटी का फर्ज होता है, और अक्षय की पत्नी है वो, पत्नी का कर्तव्य होता है अपने पति का सहारा बने, उसका सुख दुख बांटे, मुश्किल घड़ी में उसका साथ दें। बाहर जाकर काम करती है, पैसे कमाती है, तो अगर आज वो पैसे अपने पति की परेशानी कम करने के लिए इस्तेमाल में लाए तो इसमें गलत क्या है? इस घर में रहती है, खाती पीती है, सब सुख सुविधाएं भोगती है, तो अगर अब इस घर पर कुछ रुपए खर्च कर देगी तो हमें तो इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता। अगर आपके आदर्श आपको बहू के पैसे लेने की इजाज़त नहीं देते, तो अभी ज़रूरत है तो ले लीजिए पैसे, जब होंगे तो लौटा दीजिएगा। कम से कम अभी तो स्थिति संभल जाएगी, फलक के साथ ससुर की इच्छा पूरी हो जाएगी, तो हमारी बेटी वहाँ सुकून से रह सकेगी। वैसे देखा जाए तो उनकी कहीं बातें पूरी तरह गलत नहीं थीं, उनकी बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आहाना ने बारी बारी सबके चेहरे को देखा, फिर सकुचाते हुए बोली, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर सबको झटका सा लगा, बाकी सब तो बस सवालिया निगाहों से उसे देखते रहे, जबकि रूपाली जी उसकी बात सुनकर तुनकते हुए बोल पड़ी, क्या मतलब कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? अगर पैसे तुम्हारे पास नहीं तो हर महीने जो तुम्हारी सैलरी आती है वो कहाँ है? घर में तो तुम्हारा आज तक एक रुपया खर्च नहीं हुआ, फिर इतने महीनों से जो काम कर रही हो उन पैसों का क्या हुआ? कहीं शादी के बाद भी कमा कमा कर अपने मायके तो नहीं भेजती पैसा? हमें तो यही लग रहा है कि रह यहाँ रही हो, खाना पीना सब यहाँ करती हो और पैसे सीधे अपने मायके वालों को भेजती हो। मानना पड़ेगा तुम्हारे माँ बाप को, बेटी की शादी के बाद भी उसकी कमाई हड़पते हुए उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। रूपाली जी मौका मिलते ही उस पर चढ़कर सवार हो गई। एक बार फिर उन्हें मौका मिल गया था आहाना और उसके परिवार को जलील करने का। उनकी बातों से आहाना आहत हुई, पर आज वो खामोशी से उनके इल्जाम नहीं सुन सकी, अपने परिवार का अपमान होते नहीं सह सकी। हमारे माता पिता को हमारे पैसों का कोई मोह नहीं है, शादी के बाद क्या उन्होंने शादी से पहले भी कभी हमारी कमाई का एक पैसा नहीं लिया? बहुत स्वाभिमानी है वे, हमें जन्म देकर पाल पोस कर इस काबिल बनाने के बावजूद उन्होंने कभी हमारी
सैलरी पर अपना हक नहीं जताया है और हमारी सैलरी हमेशा हमारे पास रहती है। उन्होंने कभी हमसे पैसे नहीं लिए। आज उसने चुप्पी तोड़ी थी अपने माता पिता के सम्मान की रक्षा के लिए। उसका यूं पलटकर जवाब देना रूपाली जी को नागवार गुजरा और वो गुस्से से उस पर गरज उठी। अगर अपने कमाए पैसे अपने माँ बाप को नहीं देती तो पैसे क्यों नहीं तुम्हारे पास? क्या करती हो तुम अपनी सैलरी का? यहाँ आने के बाद से तो तुमने कभी एक पैसा इस घर परिवार पर खर्च नहीं किया, तो महीनों से जो काम कर रही हो कहाँ है सारा पैसा? जवाब तो इस सवाल का।